ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बीरगंज में लगाए गए कर्फ्यू आज रात 12 बजे तक बढ़ाई गई। शांति सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों से बचने की सर्वदलीय बैठक का अनुरोध। मानव तस्करी एवं स्थानांतरण नियंत्रण आईन 2064 में संशोधन और मानव तस्करी के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए सरकार वालों की सिफारिश। नए साल के आगमन के साथ ही देश के पर्यटन क्षेत्रों में घरेलू पर्यटकों की भीड़ और यूक्रेन के सुमी शहर के केंद्र में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 32 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। वीरगंज में कर्फ्यू की अवधि आज रात 12 बजे तक बढ़ाई गई है। वीरगंज की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कल शाम 6:30 बजे से लगाए गए कर्फ्यू की अवधि को आज रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। परसा के प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अर्याल ने बताया कि जिला प्रशासन कार्यालय में आज हुई सर्वपक्षीय बैठक के बाद यह निर्णय किया गया है। इससे पहले कल शाम को जारी किए गए कर्फ्यू को आज दोपहर 12 बजे तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब इसे आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। वीरगंज में आज हुई सर्वदलीय बैठक ने शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। वीरगंज में आज आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी पक्षों से शांति सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर कल निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान उत्पन्न हुई स्थिति के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय संगठनों और समुदाय से हड़ताल बंद जैसी गतिविधियों से बचने की अपील की। परसा के प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अर्याल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया। अर्याल ने बताया कि बैठक ने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक विशेषताओं वाले राष्ट्र की गरिमा को बरकरार रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का आग्रह किया। इसके अलावा बैठक में घायल सुरक्षाकर्मियों, पत्रकारों और आम नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई और यह निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा घायलों के इलाज की जिम्मेदारी ली जाएगी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने मुस्लिम समुदाय की भूमिका की सराहना की। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मुस्लिम समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है। पार्टी की भातृ संस्था नेपाल मुस्लिम संघ केन्द्रीय समिति द्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर में आयोजित ईद मिलन एवं नववर्ष 2082 के शुभकामना कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। सभापति देउवा ने सामाजिक एकता बनाए रखने और पार्टी को मजबूत करने में मुस्लिम समुदाय के योगदान की प्रशंसा की। मानव तस्करी नियंत्रण कानून में संशोधन पर सरकार वालों ने स्पष्ट परिभाषा और सख्त सजा की मांग की है। मानव तस्करी एवं स्थानांतरण नियंत्रण आईन 2064 में संशोधन के लिए तैयार किए गए विधेयक पर सरकार वालों ने सुझाव दिया है कि मानव तस्करी की परिभाषा को स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए। महिला कानून एवं विकास मंच द्वारा आज आयोजित एक चर्चा कार्यक्रम में विभिन्न सरकार वालों ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस कानून में संशोधन करते हुए अपराधियों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और सख्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नए वर्ष 2082 के साथ ही देश के पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है। बसंत ऋतु के आगमन और स्कूलों की वार्षिक छुट्टियों के कारण अभिभावक अपने बच्चों के साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने निकल पड़े हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों की भी वार्षिक छुट्टियां समाप्त होने के कारण वे छुट्टी का लाभ उठाकर पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व के पाथीभरा से लेकर पश्चिम के शैलेश्वरी तक के धार्मिक स्थलों में इस समय तीर्थयात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता आई है। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस समय स्थानीय पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने झापा के गौरादह नगर अस्पताल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज झापा जिले के गौरादह नगर पालिका में नए नगर अस्पताल का शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 1 34 चौक में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि ये अस्पताल न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पड़ोसी देश भारत के नागरिकों को भी उपचार सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार अस्पताल की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और सूचना प्रविधि का उपयोग करते हुए सरकार हर क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य संस्थाएं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। मकवानपुर जिले के बकाया गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के भीरकोट क्षेत्र में 59 भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारों को आज जमीन का लाल पुर्जा प्रदान किया गया। भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुर द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने इन परिवारों को लाल पुर्जा सौंपा। इनमें बकाया गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 19 लोग और 40 भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार शामिल है। आयोग के अनुसार ये वितरण नवगठित भूमि समस्या समाधान आयोग के माध्यम से मकवानपुर में पहली बार किया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सरकार से जनता की समस्याओं के समाधान पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया है। चितवन में आज पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि नए वर्ष 2082 में सभी राजनीतिक दलों को नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति के लिए नए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष आग लगने से म्यागदी में लगभग 100 हेक्टेयर वन क्षतिग्रस्त हो गए। इस साल आग लगने के कारण म्यागदी जिले में करीब 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जिला वन कार्यालय के अनुसार जिले के 28 सामुदायिक वनों में से 99 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आग ने वनों को क्षति पहुंचाई है। मकवानपुर जिले के मनहरी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 दिल्लीपुर में आज दोपहर बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान 28 वर्षीय स्थानीय निवासी अविरल थिंग के रूप में हुई है। मनहरी गांवपालिका के अध्यक्ष रंजन कालाखेती के अनुसार तूफान और बारिश के दौरान सड़क पर चल रहे थिंग पर अचानक बिजली गिरी जिससे वो घटनास्थल पर ही मारे गए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन की सुमी शहर के केंद्रीय इलाके में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिन्हें तत्काल अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह हमला आम नागरिक क्षेत्र पर केंद्रित था जिससे भारी तबाही हुई है। यूक्रेनी सरकार ने इस घटना को युद्ध अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बीरगंज में लगाई गई कर्फ्यू आज रात 12 बजे तक बढ़ाई गई। शांति सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों से बचने की सर्वदलीय बैठक का अनुरोध। मानव तस्करी एवं स्थानांतरण नियंत्रण आयन 2064 में संशोधन और मानव तस्करी के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए सरोकार वालों की सिफारिश। नए साल के आगमन के साथ ही देश के पर्यटन क्षेत्रों में घरेलू पर्यटकों की भीड़ और यूक्रेन की सुमी शहर के केंद्र में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 32 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।